ये आकाशवाणी है। अब आप प्राची प्रिया से समाचार सुनिए। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने देश के औद्योगिक परिदृश्य को बदलने के लिए राष्ट्रीय औद्योगिक गलियारा विकास कार्यक्रम के अंतर्गत 12 नए ग्रीनफील्ड औद्योगिक स्मार्ट शहरों को स्वीकृति दे दी है। नई दिल्ली में कैबिनेट बैठक के बाद मीडिया को संबोधित करते हुए सूचना एवं प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि इन औद्योगिक क्षेत्रों में संयुक्त अनुमानित निवेश 28,602 करोड़ रुपए होगा। उन्होंने कहा इन परियोजनाओं से 10 लाख प्रत्यक्ष और 30 लाख अप्रत्यक्ष रोजगार सृजित होंगे। मंत्रिमंडल ने 234 नए शहरों में 730 निजी एफएम चैनलों की ई नीलामी कराने का प्रस्ताव स्वीकार कर लिया है। इस निर्णय से मातृभाषा में स्थानीय सामग्री के प्रसारण को बढ़ावा मिलेगा और रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे। स्वीकृत शहरों में कई आकांक्षी जिले हैं और कुछ वामपंथी उग्रवाद से भी प्रभावित हैं। श्री वैष्णव ने बताया कि मंत्रिमंडल के निर्णय से श्रेणी 2 और 3 के शहरों में एफएम रेडियो की पहुंच बनेगी। मंत्रिमंडल ने केंद्रीय क्षेत्र की योजना कृषि अवसंरचना कोष के विस्तार को मंजूरी दी। इससे देश में कृषि क्षेत्र से जुड़ी बुनियादी सुविधाएं मजबूत होगी और किसानों को मदद मिलेगी। कृषि अवसंरचना कोष किसानों को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए 1 लाख करोड़ रुपए की राशि के साथ वर्ष 2020 में स्थापित किया गया था। आर्थिक मामलों की कैबिनेट समिति ने 6,456 करोड़ रुपए की लागत से रेलवे की 3 महत्वपूर्ण परियोजनाओं को स्वीकृति दी है। श्री वैष्णव ने बताया कि ये परियोजनाएं यात्रा को आसान बनाएगी, लॉजिस्टिक लागत, तेल आयात और कार्बन उत्सर्जन को कम करेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल प्रगति की 44वीं बैठक की अध्यक्षता की। मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल में प्रगति की यह पहली बैठक थी। बैठक में 7 महत्वपूर्ण परियोजनाओं की समीक्षा की गई। इनमें सड़क संपर्क और रेल की 2-2 परियोजनाएं और कोयला, बिजली तथा जल संसाधन की 1-1 परियोजना शामिल हैं। इनकी लागत 76,000 करोड़ रूपये है। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने कहा कि सरकार देश में सड़क दुर्घटनाओं को कम करने के लिए कई बड़े कदम उठा रही है। उन्होंने कहा कि दुर्घटनाओं और विशेष रूप से राजमार्गों पर होने वाली दुर्घटनाओं के कारण लोगों को पता लगाने के लिए सड़कों का ऑडिट कराया जा रहा है। इसके अलावा एम्बुलेंस वाहनों और उनके कर्मचारियों को भी नई प्रौद्योगिकी का प्रशिक्षण दिया जा रहा है ताकि वे दुर्घटना स्थलों से घायल लोगों को समय पर बचाने के कदम उठा सकें। श्री गडकरी ने नई दिल्ली में 6वें फिक्की सड़क सुरक्षा पुरस्कार और सम्मेलन 2024 को संबोधित करते हुए ये बात कही। श्री गडकरी ने औद्योगिक और शैक्षणिक संस्थानों समेत सभी हितधारक से अनुरोध किया कि सड़क सुरक्षा ऑडिट में योगदान करें। झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री चंपई सोरेन ने हेमंत सोरेन सरकार में मंत्री पद और झारखंड मुक्ति मोर्चा के सभी पदों से इस्तीफा दे दिया है। पार्टी अध्यक्ष शिबू सोरेन को लिखे पत्र में उन्होंने कहा कि पार्टी की कार्यशैली और नीतियों ने उन्हें पार्टी छोड़ने के लिए मजबूर किया है। चंपई सोरेन कल भारतीय जनता पार्टी में शामिल होने जा रहे हैं। उन्होंने झारखंड विधानसभा की सरायकेला सीट से भी इस्तीफा दे दिया है। श्री सोरेन ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी में शामिल होने का उनका निर्णय झारखंड के लोगों के हित में है। निर्वाचन आयोग ने हरियाणा भाजपा को चुनाव प्रचार के लिए बच्चे के इस्तेमाल पर नोटिस जारी किया है। भाजपा की हरियाणा इकाई ने सोशल मीडिया एक्स पर जारी एक वीडियो पोस्ट में बच्चे के इस्तेमाल किया था। आयोग ने इस मामले की गंभीरता से लेते हुए प्रदेश अध्यक्ष मोहनलाल बडोली को नोटिस जारी किया और तत्काल सुधारात्मक कदम उठाने को कहा है। आयोग ने भाजपा प्रदेश अध्यक्ष को आज शाम 6 बजे तक जवाब देने को कहा है। पैरालंपिक खेलों का कल फ्रांस की राजधानी पेरिस में शानदार आरंभ हुआ। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने पेरिस में एक रंगारंग समारोह के दौरान खेलों की शुरुआत की घोषणा की। 167 देशों का प्रतिनिधित्व करने वाले कुल 4,400 पैरालंपिक खिलाड़ियों ने चैम्प्स एलिसिस से पैलेस डे ला कॉनकॉर्ड से मार्च किया। भारतीय दल का नेतृत्व टोक्यो 2020 के स्वर्ण पदक विजेता भाला फेंक खिलाड़ी सुमित अंतल और विश्व रिकॉर्ड धारक टेबल टेनिस खिलाड़ी भाग्यश्री जाधव ने किया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।